मेरे अभिन्न दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूं आपने अंदाजा लगा लिया होगा। मैं अब यहां उसे डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, जो 27 मार्च को अभी भोपाल पहुंचने वाले हैं, क्लास अटेंड करने वाले हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगा। मेरे पास इस बीच में कुछ मेल्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, जिसमें वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर, मैं यहाँ से हूँ, अगर यहाँ से कोई और स्टूडेंट आपके पास आने वाला हो तो प्लीज़ आप मुझे उसका मोबाइल नंबर दे दें, ताकि हम दोनों मिलकर के एक साथ वहाँ से आ सकें। उसमें लड़के भी हैं, उसमें लड़कियाँ भी हैं, और उनका कहना यही है कि हम पहली बार घर से निकलेंगे तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है, झिझक हो रही है, इस तरह की बातें वे लिख रहे हैं। चलिए, मोबाइल फोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि दिया ही क्यों जाना चाहिए। यहां मैं आप सबसे एक बात कहने जा रहा हूं, आप अपने घर से पहली बार निकल रहे हैं। अगर आज से 5 साल पहले आपने यह काम किया होता तो क्या वो पहली बार नहीं होता? तब भी क्या आप यही बात नहीं कर रहे होते? इस मंत्र को दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी काम जब हम अपने जीवन में कर रहे होते हैं तो पहली बार होता ही होता है, इसके बाद फिर दूसरी और तीसरी बार होता है। नंबर वन। नंबर दो, आपके दिमाग में दोस्तों ये बात बहुत साफ होनी चाहिए कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। यहां आप क्लास अटेंड करने आ रहे हैं जानने के लिए कि सिविल सर्वेंट बन कैसे सकता हूं, लेकिन आप ये मत समझिए कि सिर्फ क्लास ही सब कुछ होती है। आपको अपने व्यक्तित्व में, आपको अपने सोच में, आपको अपनी आवाज में, सब में वो गुण लाने होंगे जो एक सिविल सर्वेंट में होने चाहिए। जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप लोगों की समस्याओं का हल निकालेंगे, और ये आपकी अपनी छोटी सी समस्या है कि मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप देखिए कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अकेले ही ट्रैवल करते रहते हैं, कहां कहां नहीं जाते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। और चलिए, अगर अपवाद स्वरूप किसी के साथ कुछ घटना घटित भी हो जाए तो हम उससे क्यों इतने आशंकित हो जाएं कि ऐसा लगने लगे कि यह घटना मेरे साथ भी घटित हो सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम सफर कर रहे हैं, हम पूरी सतर्कता के साथ सफर कर रहे हैं, अपनी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, चढ़ने उतरने का ध्यान रख रहे हैं, पूरी तरह से चौकन्ने हैं और मस्ती में यात्रा कर रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ट्रेन से यात्रा करेंगे, ट्रेन में इतने सारे लोग होते हैं, वो आपका सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल मत डरिए, अकेले आइए। और अगर आपको फोन नंबर मिल भी जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि नहीं, मुझे अकेले ही यात्रा करनी है, तभी तो आप अपने को तौल पाएंगे, खुद को यह विश्वास दिला पाएंगे कि नहीं, मैं यह कर सकता हूं, नहीं, मैं यह कर सकती हूं। तो दोस्तों, अपने अंदर इस तरह के आत्मविश्वास को पैदा करना शुरू कर दीजिए, और यहां आने को लेकर के जो भी मन में आशंकाएं उठती हैं, तर्क के आधार पर उन्हें समझाइए कि नथिंग विल हैपन, मैं हूं, मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगी, कोई स्थिति आएगी तो मैं उससे निपटूंगी, अंततः आफ्टर ऑल मैं सिविल सर्वेंट बनने जा रही हूं, सिविल सर्वेंट बनने जा रहा हूं। राइट फ्रेंड्स, दोस्तों एक तथ्य जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, अखबारों में वो आंकड़े आए हैं कि यह देखा जा रहा है कि खासकर लोकसभा के आंकड़े मेरे पास हैं कि लोकसभा में धीरे धीरे जो परिवारवाद के सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और अब काफी हो गई है। एक आंकड़ा आया है जो सेरी और अशोका यूनिवर्सिटी के स्टडी में सामने आई है, वो ये है कि अभी जो हमारी लोकसभा है, मेरी समझ से अच्छा डेटा है, आपको नोट कर लेना चाहिए कि कांग्रेस के लगभग 44% जो मेंबर्स हैं वो परिवारवाद से हैं। परिवारवाद कहने का मतलब है कि उनके अपने, चाहे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, कोई न कोई राजनीति में रह चुके हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, पॉलिटिकल फील्ड में रह चुके हैं, इसी वजह से वे अब यहाँ मौजूद हैं, यानी कि वंश परंपरा को यह दिखा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके भी 25% जो सांसद हैं वो नेताओं के परिवार से हैं, 44% और 25%। ये सामान्यतः दो पार्टियों के बारे में ही बता देना, मैं समझता हूं कि सफिशिएंट होगा। और इस स्टडी में एक बात और शो की गई है कि जो महिला उम्मीदवार हैं या जो महिला सांसद हैं उनमें से बड़ी संख्या परिवारवाद की है। यानी कि होता क्या है कि जब किसी वजह से पुरुष चुनाव नहीं लड़ पा रहा है या असामयिक उसका निधन हो गया, तो कोशिश ये की जाती है कि उनकी पत्नी या उनके परिवार के सदस्य, महिला सदस्य को चुनाव लड़ा दिया जाए, तो उन्हें फिर एक इमोशनल वोट मिल जाते हैं और उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और बाकायदे इस स्टडी में ये पाया गया है कि जिनके परिवार के सदस्य पहले से ही राजनीति में हैं, अगर उन्हें चुनाव में खड़ा किया जाए तो उन्हें के जीतने की संभावना अपेक्षाकृत दूसरे मेंबर्स की तुलना में ज्यादा होती है। दोस्तों, परिवारवाद भारतीय लोकतंत्र के नस की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। 3-4 साल पहले मेंस में सीधे सीधे इस पर प्रश्न पूछा गया था। इस लिहाज से यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की जो अभी दुर्दशा हुई है उसको लेकर के लगातार आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स किए जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी इस बात को दी जा रही है, इस बात को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वंशवाद कांग्रेस को ले डूबेगी, डूब चुकी है और जो थोड़ी बहुत बची है वो उसे खत्म कर देगी। इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं जो एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए आप यूं मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही होगी। इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो ये राजतंत्र से अलग नहीं है। राजतंत्र में क्या होता था, जो राजा है राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। रामचरितमानस में जो संकट पैदा हुआ है राम वनवास वगैरह का, क्या है वो गद्दी को लेकर के है ना, कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। महाभारत का युद्ध हुआ वो किसके लिए हुआ, उत्तराधिकारी के लिए हुआ। तो राजतंत्र और परिवारवाद, चाहे परिवारवाद वो लोकतंत्र के छद्म वेश में ही क्यों ना आए, तो आप यूं मान करके चलिए कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में परिवारवाद मौजूद है। तो है तो वह कहने के लिए लोकतंत्र, लेकिन वह छद्म वेश में एक प्रकार से राजतंत्र ही है। दोस्तों, मुझे मुख्य विषय के अंतर्गत आप सबसे जो हिजाब पर फैसला आया है उसके बारे में कुछ बातें करनी हैं। अखबारों में आज काफी कुछ लिखा गया है, आज मैं कुछ अलग हट करके आप सबसे बातें करने जा रहा हूं। देखिए, घटना एक है, हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, अखबारों में बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी कैसे तैयारी करेंगे, मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप दो तरह के एग्जाम देते हैं, एक प्री देते हैं, एक मेंस देते हैं। दूसरी बात कि अभी मेंस के रिजल्ट आने के बाद जो इंटरव्यू होंगे तो इंटरव्यू का स्टेज आ जाएगा, और चूंकि यह घटना अभी की है, यह निर्णय अभी आया है, तो इंटरव्यू में भी इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह के आपके 3 स्टेजेस हो जाते हैं। तो जब भी कोई इस तरह की बहुत ही जब महत्वपूर्ण घटना घटती है तो आपके दिमाग में 2 स्टेजेज होने चाहिए कि इस घटना के तहत प्री के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रही है और मेंस में किस तरह के संभावना बन रही है, पहली बात, राइट। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो घटना घटित हुई है हिजाब पर फैसले वाली, ये आपके किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आप कह देंगे कि ये हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। यानी कि अगर हम मेंस की दृष्टि से बात करें तो यह जनरल स्टडीज के 2nd पेपर का टॉपिक है, बिल्कुल सही है आप। लेकिन सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपकी जो दृष्टि है वो बहुकोणीय होनी चाहिए, उसके डिफरेंट एंगल्स निकाल लेने की आप में क्षमता होनी चाहिए। और जब आपकी कॉपी जांची जाती है मेंस की, तो ये देखा जाता है कि आपने एक घटना का इस्तेमाल कैसे भिन्न भिन्न रूपों में कर लिया है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि इसमें कितनी सारी बातें आई हैं। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 25 की बहुत विस्तार के साथ बात की गई है। अनुच्छेद 25, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 25(2) पर विशेष रूप से बात की थी, है ना। उसमें यह था कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है ना बिल्कुल निर्बाध नहीं है, वो 25(2) में है। और हम लोग अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को जो हर महीने कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें मैंने 25(2) का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अब यहां पर बात कही गई है 25 की, अनुच्छेद 25, और अनुच्छेद 25 का संबंध सीधे सीधे धार्मिक स्वतंत्रता से है। जब आप धार्मिक स्वतंत्रता वाले बिंदु को निकालते हैं तो आप देखिए कि अनुच्छेद 25 से लेकर जो अनुच्छेद 28 है उनका संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। तो यहां अनुच्छेद 25 की बात इसलिए की गई है क्योंकि जो अनुच्छेद 25 है वो स्पेशली विशेष रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसीलिए यहां अनुच्छेद 25 को रखा गया है। हालांकि इसी से संबंधित जो दूसरे अनुच्छेद हैं वो 28 तक फैलते हैं। उदाहरण के तौर पर 25 में जो है वो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। लेकिन जब आप 26 में जाएंगे तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 27 में जाएंगे तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, 28 में जाएंगे तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ विशेष रूप से कि बात तो अनुच्छेद 25 की कही गई है जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, लेकिन आपकी तैयारी का दायरा अनुच्छेद 28 तक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने अपने फैसले के तहत अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 की भी बात कही है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। अब सवाल यह है कि जो अनुच्छेद 14 है और अनुच्छेद 15 है वो किससे संबंधित है? ये भी है मूल अधिकार से संबंधित, तो आपको अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 की भी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। याद रखिए, अच्छी तैयारी। ये समता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 15 के तहत कहा गया है धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आपको 14 और 15 की भी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। एक बात ये हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत जरूरी है कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक चेतना आनी चाहिए, वैज्ञानिक चेतना पैदा किया जाए, और जब उन जो इंस्टीट्यूशंस में वो जाते हैं तो इस तरह की स्थितियां उनको प्रोवाइड की जाएं कि उनके अंदर जो हमारे संविधान में कुछ मूल्य निर्धारित किए गए हैं समता के, समानता के, वो सब इनकलकेट हों। तो सीधी सी बात है कि अब इससे संबंधित जो मूल अधिकार हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी कि जो मूल कर्तव्य का जो 8वां पॉइंट है, देखिए, वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि हमारे जो लोग हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा की जानी चाहिए। और जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि किसी भी घटना को आपको बहुत तार्किक रूप से देखना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने यह भी कही है कि यह इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि धर्म का जो सार होता है वो नहीं है, ये परप्रथा और परंपराएं हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप जाति प्रथा को लें तो भारत, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो क्या जाति प्रथा हमारे धर्म का अंग है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप सीधे सीधे शंकराचार्य के दर्शन पर आ जाएं, जो उनका अद्वैत दर्शन है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म का सार क्या होता है और जाति प्रथा क्या इसको क्वालिफाई करती है। अब आप देखिए कि एक और कोण आप लेकर के चल सकते हैं कि जो धर्म का निर्माण हुआ है वो किसी विशेष काल में हुआ है। वैदिक का धर्म अपने समय में आया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपने समय में आया, इस्लाम धर्म अपने समय में आया, ईसाई धर्म अपने समय में आया, फिर सिख धर्म अपने समय में आया। तो ये जितने भी धर्म होते हैं ये बेसिकली अपने समय को एड्रेस कर रहे होते हैं। उस समय की जो समस्याएं होती हैं उनका निदान इनमें ढूंढा जाता है, व्यवस्थाएं की जाती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं। तो वो उस समय की बात थी, और समय गतिशील है, वो लगातार बदलता रहता है। समाज का स्वरूप, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तो धर्म को कभी भी उस कट्टरता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे आप इस रूप में भी व्याख्यायित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये घटना एक है, लेकिन इस घटना को आप बहुआयाम प्रदान कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये सिविल सर्वेंट बनने की आपकी क्षमता को बहुत ही खनकदार तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकेगा। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: रोशनी वैशाली बिहार से, खुशहाल प्रजापत, पुष्पक देवांगन, गौरव मेघवाल उदयपुर से, और पायल खत्री उदयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।